ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஹரேக் பிராணி கே ஹிருதய மே விராஜமான் ஹை ஔர் சப்கே ஹிருதய மே ஸ்தித் ஹோகர் வோ ஹரேக் பிராணி கோ மார்க்தர்ஷன் கர்தே ஹை, உன்கோ ஜ்ஞான் தேதே ஹை, விஸ்மிருதி பி தேதே ஹை. சர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்ருதி சன்னிவிஷ்ட மத்தஹ ஸ்மிருதிர் ஜ்ஞானம் அபோஹனம் ச. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண 15வது அத்தியாயம் கேத்தே ஹை கி மே சப்கே ஹ்ருதய மே பேட்டா ஹுவா ஹூ ஔர் ஹ்ருதய மே ஸ்தித் ஹோகர் மே சபி கோ ஜ்ஞான் ஸ்மிருதி ஔர் விஸ்மிருதி திலாதா ஹூ. பகவான் கி வஜஹ சே ஹி ஹமே சக்தி மில்தி ஹை, ஹமே புத்தி மில்தி ஹை, ஸ்மிருதி மில்தி ஹை. ஜோ பி குச் ஹம் கர்தே ஹை கேவல் பகவான் ஹமே சக்தி கர்னே கிலியே தேதே ஹை, இஸ்லிய ஹம் கர் பாதே ஹை. கீதா மே பகவான் போல்தே ஹை பௌருஷம் ரிஷு, மே மனுஷ்ய கே பீதர் யோக்யதா ஹூ, பலம் பலவதம் சாஹம், பல்வானோ கா பல் மே ஹூ, தேஜஸ் தேஜஸ்வி நாமஹம், தேஜஸ்வி லோகோ கா தேஜ் மே ஹூ, புத்திர் புத்திமதாமஸ்மி, புத்திமான் லோகோ கி புத்தி மே ஹூ. தூசரே சப்தோ மே ஜோ பி குச் யோக்யதா, புத்தி, சக்தி, தன், யஷ், ஜோ பி குச் ஹமாரே பாஸ் ஹை, வோ கேவல் பகவான் கி கிருபா சே ஹமே ப்ராப்த் ஹுவா ஹை. ஔர் யே சப் பகவான் கி ஹி சம்பத்தியா ஹை, ஹமாரா நஹி ஹை. அகர் ஹமே யஷ் மில் கயா சமாஜ் மே தோ ஹமே யே நஹி சோச்னா சாஹியே கி யே யஷ் மேரா ஹை. யே யஷ் இஸ்லிய மிலா ஹை கி பகவான் நே வோ தோடே பஹுத் குண பிரதான் கியே தே ஔர் பகவான் கி இச்சா தி இஸ்லிய யஷ் மிலா. கை பார் லோகோ கே அந்தர் குண ஹோதே ஹை லேகின் யஷ் ப்ராப்த நஹி ஹோதா, கியோன்கி பகவான் கி இச்சா நஹி ஹோதி ஹை. ஔர் கபி கபி குண ந ஹோதே ஹுவே பி அகர் பகவான் கி இச்சா ஹோ தோ உஸ்கா யஷ் சப் ஜகஹ ஃபைல் சக்தா ஹை. தூசரே சப்தோ மே ஹமே கபி யே நஹி சோச்னா சாஹியே கி மே குச் ஐசி சீஸ் கர் ரஹா ஹூ ஜோ கி பஹுத் விஷேஷ ஹை, ஜோ கி பிரசன்சனீய ஹை. கியோன்கி ஜோ பி கோய் காரிய ஹம் கர்தே ஹை கேவல் பகவான் கி சக்தி கி வஜஹ சே கர்தே ஹை, அன்யதா ஹம்மே கோய் க்ஷமதா நஹி, கோய் யோக்யதா பாத்ரதா நஹி ஹை. அகர் ஹம்னே கிசி சே 2 லாக் ரூபாய் உதார் லியே ஔர் ஃபிர் சப் ஜகஹ ஹம் பதானே லகே லோகோ கோ தேகோ மே கித்னா அமீர் ஹூ, மேரே பாஸ் 2 லாக் ரூபாய் ஹை தோ லோக் க்யா கஹேங்கே, அரே 2 லாக் ரூபாய் தோ ஹை லேகின் யே தோ தும்ஹாரே ரூபாய் நஹி ஹை, தும்னே தோ உதார் லியே ஹை தோ தும்ஹாரே 2 லாக் ரூபாய் கி க்யா கீமத் ஹை, க்யூ இத்னா படப்பன் கர் ரஹே ஹோ கி மேரே பாஸ் 2 லாக் ரூபாய் ஹை, க்யூன்கி பைசே தோ தூஸ்ரே கே ஹை. டீக் உசி பிரகார் சே இஸ் சன்சார் மே லோக் கபி கபி கமண்டி ஹோ ஜாதே ஹை, மேரே பாஸ் இத்னா தன் ஹை, இத்னா சௌந்தர்ய ஹை, இத்னி புத்தி ஹை, இத்னா பல் ஹை, இத்னா யஷ் ஹை, இத்னா ஊஞ்சா பத் மேனே ப்ராப்த் கியா ஹை, மேரே பாஸ் காடி ஹை, யே ஹை, வோ ஹை. லேகின் இன் சப் சீஜோ கே பாரே மே ஹமே அபிமான் ஹோனே கி கோய் ஜரூரத் நஹி ஹை, க்யோன்கி யே சப் சீஜே பகவான் கி ஹை, பகவான் சே ஹம்னே உதார் லியே ஹை, பகவான் நே உதார் தியா ஹை ஹமே, தோடி பஹுத் புத்தி, தோடா பஹுத் பல், தோ உதார் கே மால் பே ஹமே க்யோ கமண்ட் ஹமே அப் ஹமாரே அந்தர் லானா சாஹியே. இஸ்லிய ஜோ வியக்தி பக்தி மார்க் மே லக்தா ஹை வோ அச்சி தரஹ சே ஜான்தா ஹை கி மேரி கோய் யோகியதா நஹி ஹை, அகர் ஹம் குச் பி கர் பா ரஹே ஹை சன்சார் மே கேவல் பகவான் கர்வா ரஹே ஹை இஸ்லிய கர் பா ரஹே ஹை. யே ஜோ க்யான் ஹை யே பஹுத் ஆவஷ்யக் ஹை, ஐசே க்யான் சே வியக்தி நம்ர ஹோ சக்தா ஹை ஔர் பகவான் கோ ஹி அப்னா ஆராத்ய தேவ் மான் சக்தா ஹை. நஹி தோ அகர் வியக்தி கே ஹ்ருதய மே கமண்ட் ஆ ஜாய் தோ வோ பகவான் கா நாம் கபி பகவான் கே நாம் கா உச்சாரண கபி நஹி கர் பாயேகா. கீர்த்தனிய சதா ஹரி யே ஹமாரே ஜீவன் கா உத்தேஷ்ய ஹை, லேகின் இஸ்கோ கர்னே கே லியே ஹமே த்ரிணாத் அபி சுனிச்சயன ஹோனா ஹை, த்ரிண சே பி அதிக் நம்ர ஹோனா ஹை, தரோர் அபி சஹிஷ்ணுனா விருக்ஷ சே பி ஜ்யாதா சஹன்ஷீல் ஹோனா ஹை, அமானி நமான் தேனா தூசரோ கோ சம்மான் தேனே கே லியே ஹமேஷா தயார் ஹோனா ஹை, अपने आप के लिए सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं करनी है। ये सारे गुण हैं जो कि हरि कीर्तन सदा करने के लिए आवश्यक है, और हरि कीर्तन करने से हमारे जीवन की सफलता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं घटनाएं हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि बड़े से बड़े शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा, भक्त, राजा इत्यादि, इनकी सारे शक्तियां केवल भगवान के बल पर, भगवान की कृपा से मिली हैं। और जब भगवान ने ये शक्ति वापस ले ली तो ये सारे बड़े बड़े राजा इत्यादि योद्धा जो पहले इतने शक्तिशाली थे, अब उनकी शक्ति गायब हो गई। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में एक लीला है, जब युधिष्ठिर महाराज राज कर रहे थे इंद्रप्रस्थ के ऊपर, तो उस समय अर्जुन द्वारका में गए थे। ये उस समय की बात है जबकि भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, सारे कौरव नष्ट हो चुके थे और युधिष्ठिर महाराज दोबारा सारे पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे, और कई दिनों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अर्जुन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को देखने के लिए द्वारका गए थे। लेकिन अर्जुन के हस्तिनापुर से गए हुए पूरे 7 महीने बीत चुके थे, और जैसे जैसे समय बीत रहा था युधिष्ठिर महाराज चिंतित होते जा रहे थे, और वो देख रहे थे कि बाहर कई अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, और वो उनको समझ में आया कि ये अशुभ लक्षण जो दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि कोई दुर्घटनाएं होने वाली हैं, और जो भी होगा वो लोगों के कल्याण के लिए नहीं होगा। और फिर वो देखने लगे कि सब जगह कोई न कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि प्रकृति के नियम के विपरीत हैं, जैसे कि बारिश के समय बरसात नहीं होती थी बल्कि गर्मी के समय में आ जाता था बरसात, और ठंडी में ठंडी होने के बजाय कभी गर्मी हो जाती थी, गर्मी में अचानक ठंडी, मतलब काल चक्र भी कभी इस तरफ कभी उस तरफ घूमता था। और उधर लोगों के बीच में जो व्यवहार था, लोगों का संबंध था, उसमें भी प्रदूषण आ गया। लोगों के बीच में जो मैत्रीय एक भावना थी, प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना जो थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि उनके राज्य में धीरे धीरे से लोग अभी लोभी होते जा रहे हैं, दुष्ट होते जा रहे हैं, घमंडी होते जा रहे हैं। वैसे आजकल तो कलयुग में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर ऐसे प्रकार के लोग हम देखें सब जगह तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके अंदर ये गुण नहीं है तब आश्चर्य होगा। लेकिन उस समय द्वापर युग का समय था, और द्वापर युग में ज्यादातर लोग बड़े धर्मपरायण थे, सद्गुण संपन्न थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने जब ये दुर्गुण धीरे धीरे से देखे सारे समाज में तो बड़े चिंतित हुए। देखने लगे कि भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माता पिता के बीच में धीरे धीरे झगड़े पैदा हो रहे हैं, और पैसे की वजह से भी बहुत कुछ उत्पात हो रहा है समाज में। और उन्होंने अपने छोटे भाई भीमसेन को बुलाया और कहने लगे, हे भीम, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो अच्छा नहीं है। ये देखो सारे लक्षण, सब जगह ये नीच प्राणी जो हैं वो मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, गाय ये सब मेरे बाएं ओर से जा रहे हैं, और कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आके मुझ पर भौंक रहे हैं, और नाना प्रकार के और अशुभ लक्षण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये पक्षियां इतना सब चीख रहे हैं मानो कि सृष्टि के संहार का समय आ गया, और गाय के जो बछड़े हैं वो दूध नहीं पी रहे हैं, और गाय है दूध नहीं दे रहे हैं, और ऐसे लगता है कि मंदिरों में जो विग्रह हैं वो रो रहे हैं, और ऐसे लगता है कि प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया है, पेड़ों पे फल फूल अभी इतने नजर नहीं आते हैं, सब जगह गड़बड़ ही गड़बड़ लग रहा है। और इस प्रकार से यज्ञ भी नहीं हो रहे हैं, यज्ञ में घी इत्यादि डालने से अभी अग्नि भी नहीं होता, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और मेरे शरीर के बाएं भुजाओं में, जंघों में और आंखों में एक प्रकार की कंपन हो रही है, जिससे मुझे पता चलता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। यह भी एक प्रकार का विज्ञान है जो आज हम नहीं जानते हैं। पुराने जमाने में लोग केवल बाहर वातावरण में अलग अलग प्रकार के चिन्ह या लक्षण देखते थे और वो जान पाते थे कि आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार का मौसम होगा, बारिश होगा नहीं होगा, सब कुछ जान सकते थे। जैसे कि आपको याद होगा, जब थोड़े महीने पहले गुजरात में भूकंप हुआ तो अखबार में यह खबर आई थी कि एक महिला जो कि एक गगनचुंबी अट्टालिका में रहती थी, ऊंचे 10वें-12वें मंजिल में, तो उनके पास एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता, दो कुत्ते थे। तो ये दोनों कुत्ते जो हैं भौंक भौंक कर उस महिला के कपड़े को पकड़ पकड़ के उसे नीचे खींच के ले जा रहे थे। ये महिला को समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे कुत्ते, लेकिन सोचा कि कोई वजह होगा, तो कुत्ते उनको खींचते खींचते नीचे ले गए। और थोड़े ही मिनट बाद भूकंप हुआ और वो सारी इमारत जो है वो गिर पड़ी और उसमें कई लोग घायल होकर मर गए। तो ये कुत्ते जो है उनको पता चला कि किसी न किसी तरह से यहां कुछ भूकंप हो रहा है या होने वाला है। उनकी भी ऐसी इंद्रियां होती हैं जिनको ये ऐसे बातें पता चल सकता है जो हमें नहीं पता चल सकता। पक्षियों को भी पता चलता है, इसलिए जो लोग ये विज्ञान जानते हैं, पशु पक्षियों को वातावरण में जो चिन्ह हैं उनको देखकर वो पहचान सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर पुरुष के बाएं आंख में, बाएं हाथ में थोड़ा कंपन होने लगे तो यह है कि कोई अशुभ चीज होने वाला है, लेकिन महिलाओं के लिए दाहिने का आंख में और दाहिने हाथ में अगर कंपन शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि कुछ अशुभ हो रहा है, और पुरुषों के लिए दाहिने आंख में और दाहिने हाथ में हो तो कुछ अच्छा होने वाला है, और महिलाओं के लिए बाएं हाथ में। तो ऐसे कई चीजें हैं। युधिष्ठिर महाराज ये सब विज्ञान जानते थे, तो भीमसेन से उन्होंने वर्णन किया कि अभी 7 महीने पूरे हो गए और अर्जुन अभी तक लौटकर आया नहीं है, न जाने क्या हुआ होगा उधर, क्या ऐसे हुआ है कि कोई बहुत दुर्घटना हुई है, या ऐसे हो सकता है कि कृष्ण अभी यहां रहे नहीं पृथ्वी लोक पर, क्या वो अपने धाम में वापस लौटकर चले गए, क्या हो सकता है, क्या ऐसा हुआ कि नारद मुनि की भविष्यवाणी कि कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं कि ये घटना हुई है अभी। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे भीमसेन से। और ऐसे ही इसी समय अर्जुन वहां पर आए 7 महीने के बाद। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल काला काला सा हो गया था, सारा शरीर का तेज, चेहरे का तेज निकल गया था। अर्जुन बड़े उदास लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे, सर नीचे करके, कंधों को झुकाए हुए, बड़े हल्के हल्के कदम लेकर वो अंदर आए महल के। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार अर्जुन को देखा और समझ लिए कि कुछ गड़बड़ है, तो अर्जुन से नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे कि अर्जुन सब कुशल मंगल तो है ना, क्या बात है, क्या द्वारका में हमारे सारे वृष्णि वंश और यदु वंश के मित्र और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सब ठीक तो है ना, उद्धव कैसे हैं, अक्रूर, चारुचयन इत्यादि सब कैसे हैं, और एक एक करके सबका नाम लेने लगे उनके रिश्तेदारों का, ये तो ठीक है ना, वो तो ठीक है ना। और फिर कृष्ण के पुत्र और पौत्रों के बाद उनकी जिज्ञासा करने लगे, अनिरुद्ध कैसे हैं, प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, ये सब कैसे हैं। अभी कृष्ण भगवान के सारे पुत्रों का नाम तो नहीं ले सकते थे युधिष्ठिर, और याद भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थीं, और 16,108 रानियों में से हर एक रानी के 10 पुत्र थे, तो कृष्ण भगवान के कितने पुत्र हुए? 1,61,000। और ये सारे जो 1,61,000 पुत्र हुए, इनके भी 10-10 पुत्र हुए, तो 16,10,800 पौत्र हुए। और दोनों पुत्र पौत्र और रानियों को मिलाकर 17-18 लाख हो गए सदस्य, केवल श्री कृष्ण के कुटुंब के सदस्य। उसके अलावा उनके और सारे रिश्तेदार और उनके रानियां और उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे ये पकड़ कर, और फिर जो द्वारका नगरी के और निवासी, जनसंख्या कितनी हुई होगी अभी हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में नहीं कर सकते, हमारे कल्पना के बाहर है कि एक शहर में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं। अब बेलगाम में जनसंख्या कितनी है? 4-6 लाख होगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण के का कुटुंब जो है वो 16-17 लाख का था बस। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज सबका नाम तो याद नहीं रख सकते थे, इसलिए 2-4 उन्होंने जो प्रमुख थे उनके नाम लिए और पूछा कि ये सब कैसे हैं। और फिर अर्जुन को देखा, कहने लगे, मुझे ये लगता है कि तुम बहुत चिंतित हो, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है कि तुम इतने समय से अपने राज्य से बाहर हो? क्या तुमने किसी महिला का संरक्षण नहीं किया है? क्या ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? क्या किसी ने तुम्हारे शरण लेकर तुमसे रक्षा प्राप्त नहीं की है? इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते गए और आखिर में युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, क्या ऐसा है कि हम सबके प्राण और हम सबके प्रिय मित्र श्री कृष्ण अब यहां धरती पर नहीं रहे? क्या ये बात है? जब अर्जुन ने ये प्रश्न सुने युधिष्ठिर महाराज के, तो वैसे ही वो बड़े शोकग्रस्त थे, बड़े दुखी थे, और युधिष्ठिर महाराज के सारे प्रश्न सुनकर और भी दुखी हुए। उनका हृदय, उनका गला भर आया और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, वो बोल नहीं पाए थोड़े क्षणों के लिए, फिर धीरे 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 से अपने आप को संभाल लिया और फिर बोलने लगे कि हां, जिस बात का डर आपको है वही हो गया है। अभी वो श्री कृष्ण जो कि हमारे प्राण धन है, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी विरह में ये संसार एक क्षण भी टिक नहीं सकता, वो श्री कृष्ण अभी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और वही श्री कृष्ण जिनकी वजह से मुझे इतनी सारी शक्ति दी, अब वो सारी शक्ति मुझसे चली गई है, मेरे हाथों में वही गांडीव बाण है, वही तीर, वही शस्त्र, और मैं वही अर्जुन हूं, वही मेरे भुजाएं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई योग्यता नहीं। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सबकी शक्ति, चाहे हम नास्तिक हो या आस्तिक हो, हम सबकी शक्ति, बुद्धि, बल इत्यादि भगवान श्री कृष्ण से आती है। भगवान श्री कृष्ण हरेक प्राणी को विशेष विशेष शक्ति या योग्यता प्रदान करते हैं, और खास करके जब उनके भक्त आते हैं, भक्त कृष्ण का काम संपन्न करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, श्री कृष्ण ऐसे गीता में बोलते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो जब भगवान इन सारे कार्यों के लिए अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने मित्रों को, अपने भक्तों को साथ में लेकर आते हैं, और इन सब मित्रों को विशेष विशेष शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि वो उनके कार्य में उनको मदद करें। अभी श्री कृष्ण को दुष्टों का नाश करना था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपना निमित्त, अपना यंत्र चुना, और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने ऐसे अद्भुत से अद्भुत कार्य कराए जो कि किसी भी साधारण या असाधारण पुरुष के लिए भी असंभव था। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि मैंने इतने सारे लीला यहां पर पृथ्वी लोक पर आके किए हैं और जो भी मुझे कार्य संपन्न करने थे वो समाप्त हो गए, धर्म की संस्थापना हो गई, भगवत गीता का उपदेश मैंने दे दिया संसार को, दुष्टों का नाश हो गया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, साधुओं की रक्षा हुई, पांडवों की रक्षा हो गई, अब मेरा काम हो गया, अब मुझे लौटकर जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे सोचा कि मेरा काम हो गया अब मुझे जाना है, तो वो सोचने लगे थे कि मेरे जो पार्षद, मेरे भक्त जो मेरे साथ में आए हैं और जिनको मैंने विशेष विशेष शक्ति प्रदान की है, अभी उनकी शक्ति का क्या लाभ, मैंने उनको शक्ति केवल मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए दिया था, लेकिन मेरा कार्य तो हो चुका, तो अब उनकी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए जब मैं जा रहा हूं तो मेरी शक्ति को भी साथ में लेकर जाऊंगा। तो इसलिए अर्जुन की शक्ति भी भगवान लेकर चले गए। इसलिए अर्जुन को लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और इस प्रकार से अर्जुन शोक कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे अर्जुन युधिष्ठिर से बोलने लगे कि वो मेरे प्राण धन अभी नहीं रहे जिनकी वजह से मैं कितने सारे सुंदर और अद्भुत चीजें कर सका। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमद् ऊर्जितम् एववा तत्तत् एवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जब भी हम कोई ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, शक्तिशाली या कोई ऐसे अद्भुत चीज या शक्ति देखते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि ये सब केवल भगवान के तेज का एक अंश से उत्पन्न होता है। ये है भगवान की शक्ति। तो भगवान अपने भक्तों का गौरव कराना चाहते हैं सारे संसार के द्वारा, इसलिए अपने भक्तों को ऐसे अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि सारी दुनिया उनका वाहवाकार करे। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण वही शक्ति को वापस खींच लेते हैं। तो अर्जुन सोच में पड़ गए और बोलने लगे, याद करने लगे वो सारे अलग अलग घटनाएं पिछले 100-125 सालों के, जिनमें कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए। और विरह की भावना अर्जुन के हृदय में थी, और वह अर्जुन बोलने लगे कि केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही द्रौपदी के स्वयंवर में मैं सफल हो गया, और मैंने सारे जो वहां एकत्र राजकुमार थे और राजा थे उनको परास्त करके द्रौपदी का हाथ विवाह में मैंने जीत लिया। अगर श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो मैं ये कार्य नहीं कर पाता, जो कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं के लिए संभव नहीं था। वास्तव में हुआ क्या था द्रौपदी के स्वयंवर में, जब पांडवों को कौरवों ने, खास करके दुर्योधन ने, वारणावत में भेजा था और वहां फिर उस महल को आग जला दिया था। आप सब जानते हैं कि अंदर से एक रास्ता, जमीन के भीतर से एक रास्ता बनाकर पांडव वहां से निकल पड़े थे, और सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि शायद पांडव उस अग्नि में खत्म हो चुके होंगे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि पांडव और उनकी माता कुंती वहां से निकल पड़े हैं। तो ऐसे ही अज्ञात रूप में घूमते घूमते ब्राह्मणों का वेश पहन रहे थे, और उन्होंने जान लिया कि पांचाल देश में वहां पर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। तो पांडवों ने सोचा कि ठीक है, हम भी इस स्वयंवर में जाएं, और रास्ते में उनको कोई ब्राह्मण मिले, और ब्राह्मण बोलने लगे कि हम भी वहां कांपिली नगरी में जा रहे हैं जो कि पांचाल देश की राजधानी है, और वहां पर द्रुपद राजा एक बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं, और ऐसे अनुष्ठान में प्रथा होती है कि राजा ब्राह्मणों को दान देते हैं। अभी आप कौन हैं? तो पांडवों ने कहा, हम तो पांच ब्रह्मचारी हैं, हमारे माता के संग हम जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, कम से कम तुम्हें अच्छा दान तो मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे, चलो आ जाओ, और अगर भाग्य तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें और भी बहुत कुछ दान मिल जाएगा। और ब्राह्मणों ने भीम की ओर देखा, कहने लगे, तुम्हारा शरीर तो बड़ा तगड़ा है, हो सकता है वहां अनुष्ठान में भाग लेकर कुश्ती के प्रतियोगिता में भाग लोगे तो तुम्हें बहुत धन मिल सकता है। खैर चलो हमारे साथ, हम भी वहां पर जा रहे हैं। तो पांचों पांडव वहां राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे। द्रुपद राजा चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी के लिए एक कोई ऐसा वर मिले जो कि अर्जुन के बराबर हो। वो तो सोच रहे थे कि शायद अर्जुन भी अभी अग्नि में खत्म हो चुके होंगे। वो कहने लगे कि मैं एक ऐसी परीक्षा रखूंगा वर के लिए जो कि केवल अर्जुन कर पाएगा, और अगर किसी ने यह कर पाया तो मैं जान लूंगा कि यह अर्जुन है। बहुत कठिन परीक्षा। और वो परीक्षा क्या थी? परीक्षा थी कि वहां पर सामने एक धनुष रखा था जो कि बहुत बड़ा था, मजबूत था। उसको पहले बांधकर, उसको उठाकर, फिर नीचे एक पानी का एक भांडा था या पानी का एक पात्र था, और जो जिसमें पानी हिल रहा था, और उस हिलते हुए पानी में देखकर प्रतिबिंब देखना था। किस चीज का? ऊपर एक मछली का, और मछली एक घूमते हुए चक्र के ऊपर स्थित था, और चक्र के भीतर से तीर को मारना था और इस मछली के आंख को मारना था। और जो व्यक्ति केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर तीर को सही निशाने पर मार सकता था वही केवल द्रौपदी के हाथ को जीत सकता था। यह शर्त राजा द्रुपद ने रखा था। और जगह जगह से सारे राजाओं को, महाराजाओं को, क्षत्रियों को उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो बहुत सारे क्षत्रिय वहां एकत्र हुए थे, एक से बढ़कर एक। राजा जरासंध, दुर्योधन और कर्ण इत्यादि सब वहां पर उपस्थित हुए थे। और जब वहां आए तो ब्राह्मणों के बीच में ये पांच पांडव भी बैठ गए। तब तक गंधर्वों की कृपा से उनके गुरु धौम्य की मुलाकात भी हुई थी, तो धौम्य ऋषि भी उनके साथ में आए थे। तो द्रुपद राजा ने सबसे पहले घोषणा की कि यहां इस स्वयंवर के नियम क्या होंगे और राजा को क्या करना चाहिए द्रौपदी का हाथ जीतने के लिए। और फिर धृष्टद्युम्न ने कहा कि केवल जो क्षत्रिय हैं या उससे ऊपर, ऊपर मतलब ब्राह्मण, वही मात्र इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। तो पहले एक एक करके राजा आए सब, और कई राजा उस धनुष को उठा ही नहीं पाए। तो सर नीचे करके अपना चेहरा लाल लाल होकर वो चले गए। अपमान, जब क्षत्रिय का अपमान होता है तो उसके लिए मृत्यु से भी वो बुरा हो जाता है, तो उठा भी नहीं पाए। फिर थोड़े लोग आए जिन्होंने उठाया लेकिन उस धनुष के रस्सी को बांध नहीं पाए, और थोड़े लोग आए जो जिन्होंने उठाया धनुष को, तीर को बांधा, लेकिन जब जब धागे को बांध रहे थे उस रस्सी को, उसका इतना प्रतिकार हुआ कि फिर से छूट गया कि वो पीछे फेंक दिए गए, 10-15 फुट 20 फुट पीछे उड़ गए वो उसके प्रभाव से, जब तीर धनुष फिर से ऊपर आ गया। तो ऐसे सभी लोग इधर उधर गिर पड़े। उसके बाद में जरासंध राजा आए जिसके हजारों हाथियों की शक्ति थी। जरासंध ने भी कोशिश की लेकिन जरासंध भी पीछे गिर गए। और फिर दुर्योधन आ गया है। दुर्योधन जब आए, दुर्योधन ने धनुष उठाया, अपने तार को अच्छी तरह से लगा दिया, और प्रतिबिंब देखकर तीर छोड़ा भी, और तीर चक्र के भीतर से गया भी, लेकिन मछली को थोड़े जगह से वो चूक गया। और दुर्योधन को गुस्सा आया, बाण छोड़कर फेंक कर नीचे जमीन पर वापस चले गए। और फिर कर्ण ऊपर आए, और जब कर्ण को देखा तो उस समय द्रौपदी ने उठकर कहा कि एक सूत पुत्र, एक शूद्र से मैं विवाह नहीं कर सकती, ये प्रतियोगिता केवल क्षत्रियों के लिए है। तो कर्ण को भी बड़ा क्रोध आया लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाए, वापस गए। जब और कोई क्षत्र रहे नहीं तो सब जगह शांति हो गई दरबार में। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि आगे क्या होगा। उस समय सभी की नजर ब्राह्मणों की ओर गई। जब क्षत्रिय अभी फेल हो गए तो अभी ब्राह्मण थोड़ा कुछ कोशिश करें, तो ब्राह्मण भी अपने ओर एक दूसरे को देखने लगे और सोचे हम क्या जाएंगे, क्षत्रिय इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए शक्तिशाली और ये नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। उस समय अर्जुन ने अपने ऋषि धौम्य की ओर देखा, तो ऋषि धौम्य ने सर हिलाया कि ठीक है। तो अर्जुन उठे, और अर्जुन के चलने के ढंग से ही थोड़े ब्राह्मणों के लगा कि हाँ ये है, ये ब्राह्मण ब्राह्मणों की जो है गौरव को बढ़ाएगा, ये एकमात्र सफल हो जाएगा। लेकिन थोड़े वृद्ध ब्राह्मण भी वहां थे, वो कहने लगे कि अरे रे, ये ब्राह्मण को क्या औकात कि वहां जाकर ये सब करे, इतने बड़े राजा है, उनकी शक्ति नहीं हुई तो ये ब्राह्मण क्या करेगा। दूसरे ब्राह्मण कहने लगे, अरे नहीं नहीं, देखो तो इसके बुझाएं, देखो तो कितनी शक्ति है इसमें, ये अवश्य कर पाएगा, ब्राह्मणों का लाज रखेगा ये, चिंता नहीं करो। तो अर्जुन गए, आसानी से वो धनुष उठाया, तार भी धनुष में लगा दिया और पानी के भीतर प्रतिबिंब, हिलते हुए पानी में प्रतिबिंब देखा और धनुष को सीधा करके ऊपर की ओर तीर को छोड़ दिया और सीधा तीर गया अपने निशानी पर चक्र के भीतर से और उस मछली के आंख को लगा और फिर वो मछली नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही वो हुआ तो हाहाकार मच गया सारे दरबार में, सारे ब्राह्मण उठकर वहां पर वाह वाह करने लगे। और उस समय द्रौपदी वहां पर हार लेकर आई और अर्जुन के गले में डाल दिया। अब किसी को यह नहीं मालूम था कि ये कौन है वास्तव में, सभी लोग सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण ही है कोई। और जब ऐसे हुआ तो पीछे हलचल मच रही थी, सारे क्षत्रिय इत्यादि वो खड़े हो गए क्रोध में और दुर्योधन बोलने लगे कि ये राजा द्रुपद ने जानबूझकर हम सब क्षत्रियों का अपमान करने के लिए यहां बुलाया है, ऐसे प्रतियोगिता में केवल क्षत्रियों को भाग लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों को भी बुलाया है और जानबूझकर कोई धोखेबाजी हुआ है यहां पर, इसलिए हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अपना तीर धनुष उठाया, अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। हर स्वयंवर में वही कहानी होती थी, जो जीतता था उसको दूसरे जो क्षत्रिय थे उनसे युद्ध करना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था, और जब तक वो युद्ध नहीं करे तब तक वो योग्य नहीं था। और दूसरे जो क्षत्रिय थे जो कि असफल हुए थे, कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे झगड़ा करने के लिए, हम असफल हुए दूसरा जो सफल हुआ उसको तो रोकना चाहिए किसी न किसी तरह से। तो उस समय जब युद्ध के लिए सारे लोग तैयार हो गए, द्रुपद राजा ने अपने सेनापति को इशारा किया, तैयार हो जाओ सेना के साथ। लेकिन सारे ये क्षत्रिय सब द्रुपद राजा की ओर आने लगे तो द्रुपद राजा के हृदय में थोड़ी घबराहट होने लगी। उस समय अर्जुन ने द्रुपद राजा के सैनिकों से तीर धनुष लिया और खड़े हो गए सामने, और भीम भी वहां थे, भीम को भी युद्ध का मौका ही चाहिए, भीम कैसे पीछे बैठ सकते हैं, भीम तो बस प्रार्थना ही कर रहे थे कि कुछ एक्शन हो जाए, कुछ तो होना चाहिए, हम तो यूं ही बैठ बैठ के जंगल में घूमते फिरते, कुछ तो मारपीट होना चाहिए, तो भीम तो इसके लिए इंतजार ही कर रहे थे। तो वहां देखा भीम ने, भीम के लिए क्या अस्त्र चाहिए, वहां एक बड़ा विशाल साल वृक्ष था, साल वृक्ष का वृक्ष ही उखाड़ लिया और अपने हाथ में दोनों अर्जुन और भीम द्रुपद राजा की रक्षा के लिए खड़े हो गए। उस समय कृष्ण और बलराम भी वहां थे। वैसे कृष्ण बलराम दोनों को मालूम था कि द्रौपदी का हाथ केवल अर्जुन के लिए है, इसलिए यदु वंश में से कोई भी राजकुमार या राजा यहां प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आगे नहीं आया था। अगर कृष्ण आते तो आसानी से कर देते, बलराम भी कर देते, लेकिन वो जानते थे कि अर्जुन को ही करना है, इसलिए वो सामने नहीं आए थे। लेकिन उस समय कृष्ण बलराम भी नहीं जानते थे कि अर्जुन है और ये भीम है। ये तो लीला है भगवान की, वैसे कौन सी क्या चीज है जो भगवान नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भी एक लीला कर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। तो उस समय कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित होकर बलराम की ओर देखे और बोलने लगे उनके कान में, अभी ये बात किसी से छुपा नहीं जा सकता कि ये केवल अर्जुन है और वो भीम है, नहीं तो कौन ऐसे वृक्ष उखाड़ सकता है और कौन ऐसे तीर चला सकता है। और उस समय सारे जो क्षत्रिय आक्रमण के लिए आगे बढ़े तो एक के बाद एक अर्जुन ने अपने तीरों से सबको खत्म कर दिया। जब कर्ण ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो कर्ण अकेले सामने आए, और जैसे कर्ण आए सामने तो अर्जुन ने अपने शस्त्र अपने तीर वगैरह चलाना शुरू किया और इतने जोर से इतनी निपुणता से अपने शस्त्र चलाए कि कर्ण आश्चर्यचकित हो गए। फिर कर्ण ने अपने शक्ति को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, लेकिन जितना कर्ण अपने शक्ति को बढ़ाते अर्जुन भी अपने शस्त्रों के वेग को प्रवाह को बढ़ाते, और हजारों तीरों से कर्ण को उन्होंने घेर ही लिया और कर्ण कुछ कर ही नहीं पाए। आखिर में कर्ण सोचने लगे कि ये है कौन, कौन हो सकता है। आखिर में जब कर्ण को पराजित कर दिया पूरी तरह से अर्जुन ने, कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहने लगे कि आप कौन हैं, आप तो कोई ब्राह्मण नहीं लगते, लगता है आप क्षत्रिय हैं कोई। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो एक साधारण गरीब ब्राह्मण हूं। तो आप कौन, शायद परशुराम से आपने सीखा होगा या द्रोणाचार्य से सीखा होगा, नहीं तो ऐसे धनुर्विद्या और कौन जान सकता है। और इस प्रकार से सारे क्षत्रियों को पता चला कि ये बड़े शक्तिशाली है। सबको अर्जुन ने और भीम ने हरा दिया था। और उधर युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों ने द्रौपदी को बाहर ले गए थे। युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि अभी जाने का समय हो गया, अभी और नहीं, यहां रुकना चाहिए। तो उस समय अर्जुन और भीम फिर वहां बाहर आए और द्रौपदी को लेकर चले गए। तो इस समय अर्जुन जबकि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का जवाब कर रहे थे, इस घटना का स्मरण कर रहे थे और वो कह रहे थे कि केवल कृष्ण की कृपा से ही मैं ये अद्भुत कार्य कर पाया, नहीं तो मेरी क्या औकात थी कि मैं ये सब कर पाऊं। और जब मैंने धनुष उठाने के लिए कदम रखा था उस समय भी मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा था, इसलिए कृष्ण के स्मरण से ही मुझे वो शक्ति मिली और अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने देखा कि अब ये शक्ति की आवश्यकता नहीं है तो शक्ति वो छीन लिए हैं। तो ऐसे एक के बाद एक एक घटना अर्जुन स्मरण करने लगे और फिर दूसरे घटना का स्मरण करने लगे कि केवल कृष्ण की कृपा से ही हम इंद्र को पराजित कर सके, सारे देवताओं को पराजित कर सके। और हमने अग्निदेव को खांडव जो जंगल है, वन है, उसको जलाने के लिए हमने अनुमति दी, अग्निदेव की सहायता की और मय दानव नाम के असुर या दानव की रक्षा हमने की, जिसकी वजह से उन्होंने हम पांडवों के लिए इतना विशाल एक धर्म सभा सभागृह बनाया। तो इसके पीछे इतिहास भी महाभारत में है कि एक बार जबकि ये घटना कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले की बात है और जब धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा आधा आधा में किया था, आधा कौरवों के लिए आधा पांडव के लिए, ये जुए के प्रतियोगिता के पहले की घटना है, जुए की स्पर्धा। तो उस समय जब कृष्ण भगवान द्वारका से इंद्रप्रस्थ आए थे पांडवों का संग करने के लिए, तो अर्जुन ने एक बार कृष्ण भगवान से कहा कि चलो हम थोड़े बहुत शहर के बाहर जाते हैं, वहां पर नदी के तट पर हमने बहुत सुंदर सुंदर रम्य ऐसे स्थान बनाए, मनोरंजन के स्थान हमने बनाए हैं, वहां जाकर हम आनंद लेते हैं। तो उस प्रकार से कृष्ण ने कहा चलो जाते हैं। तो वहां पर ले गए कृष्ण भगवान को अर्जुन और वहां जाकर सुंदर सुंदर महल थे, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, खान पान में उनका समय बीता। खान पान करने के बाद में अर्जुन और कृष्ण यूं ही सैर के लिए बाहर गए और जब वो एक जंगल के पास में आए तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत घना जंगल है और ये जंगल में के पास में बड़ा सौंदर्य है। वहां बैठे दोनों, कृष्ण और अर्जुन, और जब बैठे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वहां से आ रहे थे। ब्राह्मण एक साल वृक्ष की तरह उनका उनकी त्वचा थी और बड़ा तेज, अग्नि के समान उनका तेज, और आए उनकी ओर और दोनों से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आप दोनों के पास आया हूं एक भिक्षा मांगने के लिए। मेरा परिचय मैं देता हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं और ऐसा ब्राह्मण हूं जिसको बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगी है मुझे, तो मुझे भोजन चाहिए, तो भोजन की भिक्षा मांगने के लिए आपके पास आया हूं। तो अर्जुन और कृष्ण कहने लगे ठीक है, भोजन में क्या समस्या है, ठीक है, कौन सी तरह का भोजन चाहिए आप? मुझे साधारण भोजन नहीं चाहिए, मैं स्वयं अग्निदेव हूं और मुझे ये सारा खांडव जंगल वन खा जाना है, जला डालना है। और ये वास्तव में इंद्रदेव जो कि दूसरे देव हैं वो ये होने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि इस जंगल के भीतर तक्षक नाग जो कि इंद्रदेव का मित्र है वो वहां निवास करता है, और जब भी मैं ये खांडव जलाने का प्रयास करता हूं तो इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे कि ये अग्नि बुझ जाती है। इसलिए बार बार भी मैं प्रयास करने के बावजूद असफल रह जाता हूं, इसलिए मुझे चाहिए कि आप मेरी सहायता करें। मैं जब ब्रह्मा जी के पास में गया था तो ब्रह्मा जी ने मुझे ये उपदेश दिया कि कृष्ण और अर्जुन के पास जाओ, उनकी सहायता लो, वो साक्षात नर नारायण हैं, जो पूर्व काल में नर और नारायण ऋषि हुए वही उनके अवतार हैं ये अर्जुन और कृष्ण, तो उनके पास जाओ वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो कृष्ण अर्जुन ने कहा ठीक है, अगर जंगल ही जलाना है तो अवश्य ठीक है, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको यही जंगल क्यों खाना है, दूसरे जंगल नहीं है क्या? तो उस समय अग्निदेव ने कहा कि इसका इतिहास ऐसे है, श्वेतकी नाम का एक राजा था जिसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और उस यज्ञ में घी की मात्रा थोड़ी गलत हो गई, गलत मतलब जो प्रामाणिक मात्रा है उससे कहीं अधिक मात्रा में घी डाल दिया, और इतना सब घी जब अग्नि में डाला, अग्निहोत्र में, यज्ञ में, तो मेरे लिए पचन का कार्य में बहुत कठिनाई हो गई, इसलिए मैं बीमार हो गया हूं। हम देखते हैं कि ज्यादा हम घी खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से यज्ञ में भी प्रामाणिक मात्रा में घी डालनी चाहिए, लेकिन राजा श्वेतकी के यज्ञ में बहुत अधिक मात्रा में घी डाली गई। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए थे समस्या लेकर, तो ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया कि ठीक है, खांडव वन में बहुत सारे जड़ी बूटियां वनस्पति हैं और जिनसे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम ये वनस्पति खा लो। तो अग्निदेव खाएंगे कैसे, जलाकर ही तो खाते हैं अग्निदेव, उनकी खाने की पद्धति जलाकर है, तो उन्होंने सोचा कि इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मुझे ये जलाना चाहिए, और वैसे भी मुझे ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया है कि इस जंगल के भीतर जो भी लोग रहते हैं वो सब पापी हैं, सब प्राणी इस जंगल के पापी हैं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वो अधिकृत चीज है, इसमें कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, इसलिए कृपा करके आप मेरी सहायता करें। तो अर्जुन और कृष्ण ने कहा अवश्य हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अर्जुन ने कहा मेरे पास शस्त्र तो है लेकिन फिर भी धनुष नहीं है जिसके माध्यम से इन शस्त्रों को मैं छोड़ सकूं, मेरे पास कोई रथ नहीं है जिसके ऊपर सवार होकर मैं तेजी से इस वन की परिक्रमा में कर सकूं। तो उस समय अग्निदेव ने कहा इसकी कोई चिंता नहीं है। अग्निदेव ने प्रार्थना की वरुण देव से, वरुण देव अग्निदेव के सामने प्रकट हुए और अपनी समस्या बता दी अग्निदेव ने, क्योंकि अग्निदेव जानते थे कि वरुण देव अर्थात वो सागर के देव हैं, जल के देवता, उन्होंने अपने जल के भीतर बहुत अस्त्र शस्त्र छुपा के रखे हैं। तो वरुण देव ने अग्निदेव की बात मानी और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लाए, और उनमें से प्रमुख क्या था, गांडीव बाण। तो अर्जुन को गांडीव बाण अग्निदेव के माध्यम से मिला, और ये कैसे था, एक इंद्रधनुष के समान विशाल, एक मनुष्य के आकार का, मनुष्य के लंबाई का था, और उसमें नाना प्रकार के बहुत ही मूल्यवान रत्न हीरे वगैरह थे, इतना विशाल और तेजस्वी एक धनुष था। जब अर्जुन ने स्वीकार किया तो बड़े प्रसन्न हुए, साथ साथ में एक सुंदर रथ आया और उस रथ को चलाने के लिए दिव्य घोड़े, और उसके साथ साथ में एक ऐसा तरकश, तरकश मतलब जिसमें तीर रखते हैं, जो कि अक्षय था, और फिर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच इत्यादि उस रथ के भीतर थे। तो अर्जुन सबसे पहले उस गांडीव बाण को उन्होंने पकड़ा, तार लगा दी, और फिर यूं ही तीर के बिना उस तार को खींच दिया, और जो आवाज निकली उससे ऐसे लगा कि बादलों की गड़गड़ाहट हुई है, और जंगल के सारे प्राणी घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर अर्जुन रथ के ऊपर सवार हुए, और उस समय अग्निदेव ने कृष्ण भगवान को भी कौमोदकी नाम का उनका गधा भेंट दिया। कौमोदकी कृष्ण भगवान के गधे का नाम है, जैसे कि उनके चक्र का नाम क्या है, सुदर्शन, तो उस प्रकार से उनको ये भेंट अग्निदेव ने दिया। वैसे कृष्ण भगवान की जो सामग्री है उनके पास, ये नित्य उन्हीं की है। तो ऐसा नहीं है कि अग्निदेव का पहले था, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में आए हैं, तो उनको ये कहीं न कहीं से अस्त्र शस्त्र अलग अलग जगह से मिलने चाहिए। तो एक लीला के तौर से अग्निदेव के माध्यम से उन्होंने ये गदा, जिसका नाम था कौमोदकी, उसको प्राप्त किया। और फिर कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। तो कृष्ण भगवान भी रथ के ऊपर सवार हो गए और घोड़े को चलाने लगे। और फिर इस रथ के चक्कों के आवाज को सुनकर अर्जुन हंसने लगे, बड़े खुश हुए कि अभी असली जो उनको वाहन है वो मिल गया था। और इसी रथ को इस्तेमाल किया था अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और फिर अर्जुन और कृष्ण उस वन की परिक्रमा करने लगे। इतने तेजी से वो घूम रहे थे कि मानो कि वो मन या पवन की गति से चल रहे हैं। और फिर वापस आकर अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, अब मेरे हाथ में गांडीव बाण है, तीर है, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, कवच हैं और रथ है। अभी आपका काम शुरू करो, हम आपकी रक्षा करेंगे और देखेंगे कि कोई आपके भोजन में बाधा नहीं डालेगा। तो अग्निदेव ने अपना काम शुरू कर दिया और सारे प्राणी इधर उधर बाहर उड़ने लगे, भागने लगे। और जैसे कि ब्रह्मा जी का आदेश था कि अंदर जो भी है सब पापी हैं, तो जैसे जैसे बाहर आने लगे अर्जुन उनको तीर से मारने लगे। और क्योंकि कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने अपना प्राण त्याग किया, इसलिए सभी को एक दिव्य आध्यात्मिक रूप मिलकर वो वैकुंठ लोक में चले गए, उनको मुक्ति मिल गई। क्योंकि इनकी मृत्यु कृष्ण भगवान के आंखों के सामने हुआ था। जो शुद्ध भक्त किसी की हत्या करता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। तो अर्जुन ने जिन लोगों की हत्या की, वो सारे लोग जो है वो पावन हो गए। यह है शुद्ध भक्त की शक्ति। तो इस प्रकार से हलचल मच गया उस सारे जंगल में इधर उधर से, और अग्नि की लहरें जो है ऊपर 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 चढ़ने लगी। देवलोक में भी हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता इंद्र देव के पास आए कि हे देवराज, ये सब खांडव वन में क्या चल रहा है, क्या इतना आग हो रहा है। तो इंद्रदेव ने देखा कि अरे अग्नि फिर से ये कर रहा है। तो फिर इंद्र ने फिर से वर्षा लगा दी। लेकिन इस समय अर्जुन और कृष्ण गोल गोल घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि वर्षा आ रही है, तो अपने तीरों से इतनी गर्मी पैदा कर ली जिससे कि वो पानी बाफ में परिवर्तित हो गया और पानी जंगल को छुआ भी नहीं। और फिर अग्नि ने और इंद्रदेव ने देखा कि मेरा प्रयत्न असफल हुआ, तो और जोर से, दुगना तीन गुना ज्यादा जोर से और वर्षा छोड़ी। लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो इतने सारे तीर छोड़ दिए कि सारे जंगल की ऊपर से एक तीरों की छतरी बना दी, जिसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिर सका। और इंद्रदेव ने यह देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया। और इस बीच में अग्नि और चलती जा रही थी। उधर ये तक्षक नाग के पत्नी और उनका जो लड़का था वो वहां ऊपर उड़े आकाश में इस अग्नि से बचने के लिए। उस समय तक्षक नाग कहीं बाहर टूर पे गए थे, तो वो खांडव वन में नहीं थे। जब अर्जुन ने ये तक्षक नाग के पत्नी को देखा तो उनका सर उड़ा दिया अपने तीर से। और जब वो पुत्र भी बाहर आया तो पुत्र को मारने जा रहे थे, जब इंद्र ने देखा कि मेरे मित्र के पुत्र की हत्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे कि एक क्षण के लिए अर्जुन बेहोश हो गए। और उस एक क्षण में ये तक्षक नाग का पुत्र जो है वो गायब हो गया, दुर्भाग गया। और फिर इंद्रदेव ने भी प्रहार करना शुरू किया नाना प्रकार के अस्त्रों से, शस्त्रों से। और उनको देखकर सारे अन्य देवी देवता अपने अपने वाहनों के ऊपर सवार होकर अपने अपने शस्त्र धारण किए हुए आए। और इस प्रकार से धुआंधार युद्ध हुआ और अर्जुन ने अकेले ने सारे देवी देवताओं को हरा दिया, पीछे भगा दिया सबको। और इंद्रदेव ने देखा और बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अंततः अर्जुन उन्हीं के पुत्र तो थे, तो बड़े खुश हुए। और दूसरे देवी देवताओं से कहने लगे कि ठीक है, अब ये अर्जुन है। और उस समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने ये ब्रह्मा की आवाज थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दोनों को आप हरा नहीं पाओगे, क्योंकि ये स्वयं नर नारायण है। और वैसे भी ये नसीब में लिखा है इस वन के कि इसकी ये हालत होने वाली है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता, ये दैव है। उधर इसके पहले इंद्रदेव और अर्जुन के गुणों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक पत्थरों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन ने अपने तीरों से पत्थरों को चूर चूर कर दिया। उसके बाद में इंद्र ने पहाड़ों के ऊपर के हिस्से अपने वज्र से काटकर पहाड़ों के पहाड़ फेंकने लगे। अर्जुन ने उन पहाड़ों को भी तीर से नष्ट कर दिया और फिर इंद्रदेव ने अपना वज्र अस्त्र छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने वायु अस्त्र से उसका प्रतिकार किया। और इस प्रकार से इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। और फिर अग्निदेव ने तब तक सारा जंगल जला डाला था और अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो गए थे। उस समय उस जंगल से भागते हुए एक दानव आया, असुर, जिसका नाम था मय दानव। और ये मय दानव दानवों का इंजीनियर था, शिल्पकार, जो भी सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत चीजें वो असुरों के लिए बनाया करता था। जैसे कि आजकल हम देखते हैं आजकल के असुर गण भी बहुत बड़े बड़े भयानक चीजें बनाते हैं, एटम बॉम्ब, कंप्यूटर, टेलीविजन, रॉकेट, जहाज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अच्छी चीजें हैं। असुर लोगों के भी वैज्ञानिक होते थे जो ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें बनाया करते थे। तो इस प्रकार से माया दानव भाग के हुए आया। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया माया दानव की हत्या करने के लिए, क्योंकि जंगल से बाहर भाग के आया था। लेकिन उस समय माया दानव, जो कि बहुत बुद्धिमान था, उसने जाकर अर्जुन का शरण लिया। और जब अर्जुन का शरण लिया तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो, मैं क्षत्रिय हूं, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इसको मत मारो, और अग्निदेव से भी प्रार्थना की आप अभी इसको मत छुओ। तो अग्निदेव और कृष्ण दोनों ने माया दानव को छुआ नहीं और माया दानव बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय इंद्रदेव भी आए, अग्निदेव भी आए। अग्निदेव ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मेरी इच्छा की पूर्ति हुई है, इसलिए मैं आप दोनों को वरदान देता हूं कि जिस प्रकार से मैं सर्वव्यापी हूं ये ब्रह्मांड में, आप भी दोनों जहां चाहे वहां भ्रमण कर सकेंगे इस ब्रह्मांड में। इसलिए हम बाद में देखते हैं कि अर्जुन भी कई बार ब्रह्मांड के टूर पर गए थे। उनके लिए वर्ल्ड टूर काफी नहीं था, ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए गए थे, क्योंकि उनको अग्निदेव का वरदान था। उधर इंद्रदेव भी आए। इंद्रदेव ने भी कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा, मुझे आपके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। तो इंद्रदेव ने कहा, अवश्य दूंगा, लेकिन अब नहीं, आगे चल के जब शिवजी तुम्हें पशुपति अस्त्र देंगे उसके बाद में मैं तुम्हें खुद स्वर्गलोक ले जाऊंगा और वहां पर वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र और अन्य जो भी अस्त्र है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ठीक समय पर। तो उस समय अर्जुन ने कहा, ठीक है, और दोनों प्रसन्न हुए। और उस समय मय दानव भी वहां आए हाथ जोड़कर कि मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूं, अर्जुन आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, नहीं तो श्री कृष्ण के हाथों मेरी हत्या होने ही वाली थी। तो अर्जुन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, किसी की रक्षा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, इसके लिए मैं कोई कीमत नहीं लेता। तो मय दानव ने कहा, यह कीमत की बात नहीं है, मैं आपका आभारी हूं, इसलिए प्रेम का भेंट देना चाहता हूं। फिर भी अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन हां, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा अगर तुम श्री कृष्ण के लिए कोई सेवा करो तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करोगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, इसलिए जाकर श्री कृष्ण से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी इच्छा की पूर्ति कर लो। उस समय जब मय दानव कृष्ण के पास आए तो कृष्ण भगवान अपने लिए क्या मांगेंगे, वो तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उनकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो अपने भक्तों के लिए ही सब कुछ चाहते हैं। तो उस समय कृष्ण ने कहा, ठीक है, अभी आपको बनाना ही है, ये कला आपके अंदर इतनी है, तो आप पांडवों के लिए, जो कि मेरे इतने शुद्ध भक्त हैं, एक ऐसे विशाल सुंदर और अद्भुत सभागृह बनाओ जो कि किसी भी लोक में नहीं है, सारे ब्रह्मांड में अतुलनीय, एक ऐसा सभागृह बना लो। और मय दानव ने कहा, तथास्तु, जैसे आपकी आज्ञा। और फिर माया दानव को अर्जुन और कृष्ण वापस युधिष्ठिर महाराज के पास में ले गए। युधिष्ठिर महाराज के साथ में चर्चा हुई कि किस प्रकार का महल चाहिए। बहुत सोच विचार में पड़ गए माया दानव, और फिर उन्होंने अपना प्लान बनाया, ड्राइंग पूरा बना दिया कि कैसे अभी उस दरबार को बनाना है। और फिर उन्होंने अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर से कहा कि यहां से थोड़ी दूर में मैनक पर्वत में, वहां पर मैंने बहुत पुराने जमाने में हीरे रत्न मूल्यवान सब चीजें छुपाए हुए हैं, मैं वहां उनको जाकर लेकर आता हूं, जिसकी सहायता से मैं ये विशाल और अद्भुत सभागृह की स्थापना कर पाऊंगा। और साथ साथ में वृष पर्व नाम के राजा के एक बहुत विशाल गदा है, और ये गदा एक साधारण गदा नहीं है, 10,000 गदाओं की शक्ति इस एक गदा में है, मैं ये भीमसेन के लिए ले जाऊंगा। और माया दानव भीमसेन को फिर उन्होंने ये भेंट दिया, तो भीमसेन का गदा भी माया दानव ने दिया। और साथ साथ में अर्जुन का एक शंख था, देवदत्त, तो उन्होंने ये देवदत्त नाम का शंख भी अर्जुन को भेंट किया, जो कि मैनक पर्वत में था। तो हम देखते हैं कि इस लीला में ही अर्जुन और कृष्ण के कई जो सामग्री हैं, जैसे कि गदा है, जैसे कि उनका रथ है इत्यादि, ये सब इस लीला में उनको प्राप्त हुआ, अर्जुन का शंख भी। और फिर माया दानव ने आगे चल के सुंदर सभागृह पांडवों के लिए बनाया, और इतना सुंदर था, इसके बारे में लीलाएं आपने सुनी होंगी कि दुर्योधन जब वहां आए थे अंदर, उनको पता नहीं चला कि पानी किधर है और जमीन किधर है, और जब वो जमीन के ऊपर जा रहे थे तो धोती ऊपर करके जा रहे थे, सोचा कि यहां पानी है लेकिन जमीन था, सभी लोग हंसने लगे उनको देखकर। फिर जहां पानी था उन्होंने सोचा नहीं ये तो जमीन ही होगा, अभी पिछली बार धोखा खा गया तो ये जमीन होगा, तो ऐसे ही चले गए और चले सीधे पानी में गिर गए। जब पानी में गिर गए तो भीम इत्यादि सब जोर जोर से हंसने लगे, तो दुर्योधन के अभिमान के ऊपर चोट पहुंच गई, इसलिए उनके भीतर भीम और पांडवों के प्रति जो ईर्ष्या की भावना थी और भी प्रज्वलित अग्नि की तरह जलने लगी थी। तो ये सब माया दानव के करिश्मे से हो रहा था, माया दानव ने ऐसा सुंदर उनका दरबार और महल बनाया था। तो खैर, इस लीला में जो अद्भुत कार्य अर्जुन ने किए, अर्जुन अभी युधिष्ठिर महाराज के सामने याद कर रहे हैं कि ये सारे शक्ति केवल कृष्ण भगवान की वजह से थी, कृष्ण मेरे साथ में थे, उनकी कृपा मेरे ऊपर थी, नहीं तो अकेले मैं क्या कर पाता, कुछ भी नहीं। वास्तव में कृष्ण जब अर्जुन के साथ होते हमेशा अर्जुन को सामने कर देते, अर्जुन को सारी शक्ति दे देते, ताकि यश अर्जुन को मिल जाए, सफलता अर्जुन को मिल जाए, गुणगान और गौरव अर्जुन का हो, ये भगवान की महानता होती है। भगवान अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, अपने भक्तों के गौरव के लिए वो सब कार्य करना चाहते हैं। उसी प्रकार से भक्त को भी ऐसे ही होना चाहिए, अपने गुणगान के लिए, अपने गौरव के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, दूसरे भक्तों के लिए और भगवान का गुणगान हो, इसके लिए भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए। तो अर्जुन ये घटनाएं याद कर रहे हैं, और ऐसे कई घटनाएं हैं जो एक के बाद एक अर्जुन याद करते जा रहे हैं। आज केवल दो घटनाओं की चर्चा हमने की, अगले रविवार को और दो चार घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनका स्मरण अर्जुन कर रहे थे और याद कर रहे थे कि केवल कृष्ण भगवान की कृपा से ही मैं ऐसे कठिन परिस्थितियों में से पार होकर निकल पाया और मैंने अद्भुत कार्य किए। तो इससे सबक हम ये सीख सकते हैं कि भले ही हम अर्जुन की तरह तेजस्वी और शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हम सबके हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्य हम कर ही रहे हैं। हम पैसे कोई कमा रहे हैं, कोई घर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन जो भी छोटे मोटे कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में कभी भी हमारे हृदय में घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें समझना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है, और कृष्ण जब चाहे इन शक्तियों को छीन कर वो ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो उन्हीं की संपत्ति है, ले लें, हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले। इसलिए हमें कृष्ण के शरण में रहकर उनके श्रवण कीर्तन, उनके लीलाओं के, उपदेशों के, नाम के श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताना चाहिए। यही असली जीवन है। इस प्रकार से हम मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न भी है? शांति का फॉर्मूला ये भी भगवान ने भगवत गीता के 5वें अध्याय में दिया हुआ है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अगर हम ये 3 चीजें जान लेंगे तत्वतः श्रद्धा से हृदय से तो हम शांत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। वो कौन से 3 चीजें हैं? पहली बात भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब चीजों का भोक्ता हूं। जो भी आप यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो भी कार्य आप करते हो, उनका फल जो होता है उनका भोक्ता केवल मैं हूं। हम क्या तपस्या करते हैं दिन में? हम हमारे घर को चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो ये हमारी तपस्या है। इसका फल हमें मिलता है ना? क्या मिलता है? पैसा मिलता है, कुछ और मिलता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इनका भोक्ता मैं हूं। हम कमा रहे हैं इसलिए पैसे का भोक्ता हम हैं? नहीं। भगवान बोलते हैं जो भी तुम करते हो, यज्ञ तप दान धर्म जो भी कुछ करते हो, सबका भोक्ता मैं हूं, एकमात्र भोक्ता मैं हूं। हम सब भोग्य हैं, भगवान द्वारा भोग्य वस्तु हैं, क्योंकि हम प्रकृति हैं। तो यह पहली बात हमें जानना है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही भोक्ता है। दूसरी बात सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ही सब चीजों के स्वामी हैं, मालिक हैं। सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है, हमारा कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी अपना नहीं है, सब कृष्ण का है। ये शरीर भी कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है। ये दूसरी बात हमें जान लेना है। कैसे जान लेना है? केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से, और प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतारना है इसको। और तीसरी बात सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे प्राणियों के शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, और जो भी कुछ वो करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे। अगर हित के लिए नहीं करेंगे तो फिर सब प्राणियों के हितैषी कैसे हुए वो? इसलिए हमारे जीवन में जब कोई घटना होती है जिसको कि हम बुरा समझते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि ये बुरा नहीं है, ये भी कृष्ण भगवान की कृपा से ही हो रहा है, वो हमारे हितैषी हैं, तो कोई बुरा चीज हमारे लिए क्यों करेंगे वो? इसलिए हमें ये जानना चाहिए। और केवल वो वैष्णवों के या मनुष्यों के हितैषी नहीं है, सर्वभूतानाम सारे प्राणियों के हितैषी हैं वो। माम ज्ञात्वा, मैं ये 3 चीजें हूं, जो ये अच्छी तरह से जान लेता है शांतिम ऋच्छति। तो जब तक व्यक्ति इन 3 चीजों को तत्वतः नहीं जान सकता, वो शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। और इन 3 चीजों को जानने के लिए हमें भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण संकीर्तन में शामिल होना चाहिए, और भक्ति की जो विधि विधान है उनका पालन हृदय से करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न ये है कि कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत साल पहले भगवान के अवतार हुए थे नर नारायण ऋषि, 2 ऋषि थे, उनमें से नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और नर वो अर्जुन के अवतार हैं। अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथ में उनके लीला में शामिल होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांडों में अवतार लेते हैं अलग अलग लीला करने के लिए, अवश्य ये गीता की लीला भी करते हैं, उसमें अर्जुन भी होते हैं। तो अर्जुन नित्य पार्षद हैं भगवान श्री कृष्ण के, और कभी कभी यही कृष्ण और अर्जुन नारायण और नर के रूप में भी प्रकट होते हैं, जिस लीला में वो ऋषि के रूप में आते हैं और कड़क तपस्या करते हैं। आज भी नर नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इन स्थूल आंखों से हम उनको देख नहीं पाएंगे। नर नारायण ऋषि का वर्णन भी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विस्तार में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थोड़ी देर के लिए संकीर्तन करेंगे, कृपा करके उत्साह से संकीर्तन में भाग लीजिएगा। हरे कृष्णा। और इसके बाद में जो इष्ट गोष्ठी होगी, इष्ट गोष्ठी मतलब जिसमें हम गीता श्लोक का पाठ करते हैं, भजन करते हैं इत्यादि, प्रसाद के बाद इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, ये आप सबसे निवेदन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।